Помощи. Тя каза, ой, я пъвал тада ни. Искат ти, старик. Та ли мога се рива, искат те.
Виджай
ми джа не сакти. Виджай дата саат е, то виджай. Каха джаеги? Аш? Виджай нищит е.
देखना मतलब किसी का विशेषता देखने गुण देखने
कौन सी मुट्ठी में 31 तारीख की
विशेष बच्चे हैं
विशेषता देखना नहीं बाप दादा की नजरों में नैनों में सभी बच्चे समाए हुए हैं क्यों समाए हुए हैं क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है इस विशेषता के कारण ये मिलन मना रहे हैं और
ऐसा लगा मुझे जैसे बहुत डीप था कुछ बाबा के इशारे में जैसे कि बहुत विशेष मिलन है बहुत भाग्य
है ये मिलन कैसा मिलन है सबसे पहले तो इसको समझना है ये मिलन कोई स्थूल मिलन नहीं है ये सूक्ष्म मिलन है जो सूक्ष्म स्थिति में स्थित है वही इस मिलन को मना सकते हैं ये मिलन अमूल्य मिलन है ये मिलन न्यारा मिलन है ये मिलन प्यारा मिलन है ये मिलन बहुत 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 प्यारा मिलन है ये मिलन न्यारा और प्यारा मिलन है ये मिलन वंडरफुल मिलन है ये मिलन कोई साधारण बात नहीं है ये मिलन एक एग्जाम्पल है ये मिलन नैनों का मिलन है सोचा भी नहीं होगा स्वप्न में भी नहीं होगा वो ये मिलन है ये मिलन महान मिलन है क्या वास्तव में ऐसा ये मिलन है इसको समझने के लिए उतनी ही सूक्ष्म अवस्था चाहिए और उतनी ही सूक्ष्म अव्यक्त स्थिति चाहिए क्योंकि ये मिलन अव्यक्ति मिलन का बाप दादा अनुभव करा रहे हैं ये जैसे अचानक की लॉटरी है सबको मिलन हो जाए ये तो भाग्य की बात है सबको अनुभव हो जाए ये भी भाग्य की बात है सबको नहीं हो सकता है इस मिलन का आधार कौन कहां बैठा है इसके ऊपर नहीं है सामने है पीछे है बाजू में है स्टेज पर है इससे इस मिलन का कोई लेना देना नहीं है ये अव्यक्ति मिलन अव्यक्त मिलन है ऐसा मिलन और कहीं नहीं हो सकता है अभी तक की जो दो मूल्य इसके पहले भी चली ये मधुर मुलाकात है ये वाह वाह का संगठन है सभी नैनों के नूर दिल के दीपक है दिल में समाये हुए है ये मिलन ऐसा है कि दिल में छप जाए जब चाहो तब इमर्ज करो तो कौन सी फीलिंग आएगी इस दृश्य को इमर्ज करो तो कौन सी फीलिंग आएगी कुशल सुख की फीलिंग आएगी इस मिलन को जब चाहो तभी इमर्ज करो तो सुख की फीलिंग आएगी दिल में छप जाए बाबा ने कहा और यहीं पर एक होमवर्क दिया है कौन सा मिलन के ऊपर होमवर्क है एक
जो बाबा साहब के अनुभव करा रहे लेकिन भाग्यशाली वो है जो खुद बच्चे
वो तो ठीक है वो बाबा ने बात कही है होमवर्क एक होमवर्क है वहां पर कौन सा इस मिलन के स्वरूप को बार बार दिल में देखते रहो और अब भी अनुभव हो रहा है हम हर समय ही अनुभव हो रहा है ये केवल अभी का अनुभव नहीं है ये केवल अभी का मिलन नहीं है बाबा ने क्या कहा हर समय इस स्वरूप को दिल में बार बार देखते रहो एक और अब भी अनुभव हो रहा है बाद में भी अनुभव हो रहा है ऐसा स्थिति हो मतलब ये जो मिलन है निरंतर होता रहे ये उस मुरली का निकला वो जो बार बार इसको दिल में देखते रहो वाक्य आया है वहां पर तो ये ऐसा कौन सा ये मिलन है कि जिसकी बाबा इतनी महिमा कर रहे हैं जो महान है जो न्यारा है जो प्यारा है जो वंडरफुल है जो साधारण बात नहीं है जो एग्जाम्पल है
बहुत बहुत
हाँ वो तो दूसरी बात बताई बाबा ने बहाने नहीं इन्वेंशन, तरीके और चतुराई जो बाप भी देखकर हर्षित एंजॉय करते हैं। बंधन में है परंतु पहुंच गई, जैसे कोई प्यासी आत्मा और उसे पानी मिल जाए तो वो पानी भी उसे अमृत लगता है। मार खानी पड़ी पर बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। कितनी बार माताओं को याद किया, जो भी सामने आ रहे उनके लिए एक वाक्य बोला फिर माताओं की तरफ, विदेशी सामने एक वाक्य बोल दिया फिर माताओं की तरफ। बहनें भी कम नहीं है, भाई भी कम नहीं है, भाई गुप्त है परंतु कम नहीं है, माताएं भी बहनें भी सेवा करती है, ब्राह्मणों की सेवा करती है। मोहिनी बहन एक लाइन बोला फिर माताओं की तरफ, और विदेशी और त्रिमूर्ति भाई एक लाइन बोला फिर माताओं की तरफ, जो उसको बोलना है वो बोलेगा ही। तो बाबा सब कुछ देख रहा है, इसका मतलब सूक्ष्म उसकी दृष्टि है, हर एक चीज वो देखता है। ऐसे ऐसे तरीके है कि भगवान को भी वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है, वो भी एंजॉय करता है ये बात। तो उसके पीछे भी तो लगन है ना उनकी, तो उस लगन को वो देखता है। कल की मुरली में भी शुरुआत में क्या था, परवाने समान क्षमा पर आ गए, लगन और स्नेह को देख रहे हैं बाप दादा। परवाने समान आ गए क्षमा पर। और क्या कहा मुरली में, एक तो नहीं वो तो कल की अव्यक्तवाणी उस दिन की, दिल के दुलारे बाप, दिल के दुलारे बच्चों से देख से मिलने मिलन मना रहे हैं। और भी कोई बात थी उसमें, तो एक सूक्ष्म बात थी, विदेशियों से मुलाकात आखिरी लाइन, प्रेम के नाते से नहीं, कौन से नाते से, ज्ञान के नाते से। सभी मिलन कैसे मना रहे हैं, प्रेम के नाते से नहीं बाबा ने कहा, ज्ञान के नाते से। ये चिंतन का विषय है थोड़ा, ऐसा क्यों कहा, प्रेम का नाता केवल प्रेम, यहाँ जो शब्द है वो केवल वो शुद्ध और वो सर्वोच्च प्रेम की बात नहीं है, यहाँ प्रेम अर्थात भक्ति जैसा केवल प्यार है बस, यहाँ ज्ञान युक्त प्यार, इसके लिए कहा ना ज्ञान के नाते से, केवल स्नेह के प्रेम के नाते से नहीं। ये भी एक वाक्य आया है, और भी कुछ कहा है, होमवर्क और दूसरा होमवर्क, एक तो वो कि ये मिलन निरंतर देखते रहो, निरंतर मनाते रहो, और अब भी हो रहा है, और एक लास्ट में याद प्यार में
नवीनता
लिख के भेजो, कहने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में भेजो बस, जो दूसरी बात है। पर नया वर्ष है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ नवीनता चाहिए, हर चीज में नवीनता। फिर अमृत वेले से तो रात तक अमृत वेले में नवीनता, मुरली सुनने सुनाने मंथन चिंतन सब कुछ करने में नवीनता, ट्रैफिक कंट्रोल जो हो रहा है उसमें भी नवीनता, हमारी जो सेवाएं है उसमें भी नवीनता, हमारी जो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग है समझ है उसमें भी नवीनता, शाम की भी नवीनता, यहाँ आप लोग जो क्लास करते हैं उसमें भी क्या नवीनता। अगर नवीनता नहीं है तो वो निरस्ता आ जाती है उसमें, हर चीज हर दिन नया नया हो तो ही ये ज्ञान जो योगी जीवन है हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो सन्यासी देखो कितने सारे, उनके पास नवीनता नहीं है, इसके लिए बिल्कुल वो उदास हो जाते हैं अंदर ही अंदर, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ से गए, ऐसी अवस्था हो जाती है कितने सारे सन्यासियों की। तो यहां पर हर दिन नवीनता चाहिए हमको, जब तक वो नवीनता नहीं आएगी तब तक, और वो नवीनता आएगी कैसे, उसके लिए आपको हरी एक ही मुरली को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, अलग अलग चीजों पर लिखना, अलग अलग पॉइंट्स ज्ञान की चर्चा करना, केवल वही पॉइंट चर्चा नहीं करना, और बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो वहां से निकाल लेना, उसको याद रखना, क्योंकि जब याद है तो चिंतन चलेगा। अभी हमको किसी ने कहा कि आज की मुरली है भाई इसके ऊपर चिंतन करो, क्या चिंतन करो, वो कोई दो तीन पॉइंट्स ऐसी हो कि जो हमको पकड़ ली हो हमने, उसके बाद ही हम उसका चिंतन कर सकते हैं। जैसे आज के वरदान में था ना अकाल मूर्त, अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या हो जाएगा, तीन बातें हो जाएगी, एक तो निर्भय वो नहीं, वो तो
अकाल मृत्यु में
अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल
नहीं।
नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी, और समस्याएं
समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी।
समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो अकाल स्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप, उसमें कहा ना पुरानी देह के भान को मिटाते जाओ, तो मानसिक परिस्थितियां और मानसिक चिंताएं भी समाप्त हो जाएगी। जैसे देह के उन्नति के साधन है, वैसे ही आत्मा की उन्नति के भी साधन होने चाहिए, और उसका तरीका है फिर अकाल मोह स्थिति में स्थित हो जाओ। कल की मुरली, दादियों से मुलाकात, ऐसे साधन निकालो, कैसे, पुरुषार्थ के साधन, साइलेंस के साधन, कि जो सफलता ज्यादा मेहनत कम, जिसमें अनुभव ज्यादा परंतु जैसे साइंस वाले दुख कम, वैसे साधन निकालते हैं। रिफाइंड साधन हो, अभी अभी संकल्प किया और प्राप्ति, तो ऐसे साधन निकालो। फिर आगे जो बताया ना मौन व्रत, जैसे पहले स्थूल रखा था मुख का, अभी मन का रखो, तो टाइम भी बचेगा और फ्री भी रहेंगे, दोनों चीजें होंगी। तो ऐसा कुछ करना है कि नवीनता कहीं खो ना जाए, मतलब जीवन में उदासी ना हो जाए, नहीं तो कितना सारा ज्ञान में क्या करे और क्या नहीं, ऐसे हो जाता है। इतना तो कर रहे हैं परंतु उस करने में भी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, बहुत सारी कमी है। इसके लिए वो जैसा स्थिति होनी चाहिए वैसे नहीं है। एक तो ये बात, तो उस मुरली से दो बातें हैं, एक तो मिलन निरंतर होता रहे, उसकी अलग अलग फिर हमको विधियां निकालनी है कि कैसे होता रहे उसका। जैसे देह को याद करते सारी देह के संबंध की सारी बातें याद आ जाती है, वैसे केवल आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा के संबंध की सारी बातें याद आ जाती है। तो सबसे मुख्य पुरुषार्थ एक ही है कि बार बार आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, अलग अलग रीति से, अलग अलग तरकीब, इन्वेंशन जो करना है करो, परंतु किसी ना किसी रूप से देह से अपने आप को अलग करना है और आत्मा अलग। जैसे वो सूखा नारियल होता है ना, एक होता है गीला नारियल, एक होता है सूखा। गीला नारियल जो होता है वो है देह अभिमानी स्थिति है वो, और देही अभिमानी स्थिति मतलब दोनों अलग। वो सूखा नारियल ऐसे ऐसे हिलाओ तो हिलता है, वो अलग और वो अंदर का अलग, वो अंतिम स्थिति का सूचक है सूखा नारियल, कि हमको ये अनुभव हो कि मैं अलग हूं और ये देह अलग है, चलते फिरते उठते बैठते, कि मेरी अवस्था अपनी अलग है, मेरी चेतना ये इधर है और ये अलग है, ये चैतन्य है, ये जड़ है, मैं इसके अधीन नहीं, ये तत्व है, मैं चेतन हूं, प्योर कॉन्शियसनेस, ये यहाँ हूं, ये एलिमेंट्स है, ये धरती, ये मिट्टी है, मैं अविनाशी हूं, ये विनाशी है। जैसे आज की मुरली में सारा पॉइंट्स क्या है, आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है, नाम रूप देश सब बदलता है, तिथि तारीख बदलती है एक शरीर छोड़ने के बाद। निरंतर इस देह का और देह के विनाशी स्वरूप का भी चिंतन करना है। देह को देखना ही है तो उसके विनाशी स्वरूप को देखो, ये देखो देह इतना सुंदर है, पर यही देह जब बीमार हो जाएगा तो इसकी क्या हालत होती है, यही देह जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी क्या हालत होती है। अगर देह देखना ही है तो देह के वास्तविक स्वरूप को देखो। फिर उसमें ये दो बातें, मृत्यु और व्याधि कैसे उसको कर देती है, जर्जर जर्जरीभूत हो जाता है वो शरीर, कहीं उसकी सुंदरता नहीं रहती। ये चिंतन भी जरूरी है वैराग्य के लिए, और ये चिंतन भी कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं, तो दोनों चीजें, ये भी आत्मिक स्वरूप में भी स्थित होना है और साथ साथ देह से भी स्वयं को अलग करना। तो जिसको भी देखो, देह अगर दिख रहा है तो उसमें वही चिंतन करो कि ये नष्ट होने वाला है, ये विनाशी है, एक दिन तो जाएगा ही, और ये अटल सत्य है इस जीवन का, कोई भी यहां रहने वाला नहीं है, हम सब अपरिचित है, किसी का कोई किसी से लेना देना नहीं है, हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है, हमारी यात्रा ही अकेले की है। ये जो संबंधी बनाए हैं, भाई बहन, बहन माँ बाप, कौन किसका भाई और कौन किसका माँ, कोई किसी का नहीं। माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चे से जो कहते हैं मेरा बच्चा मेरा बच्चा, उसके पहले जब वो नहीं रहता है तब बोलते हैं क्या, तब तो कोई लेना देना ही नहीं है, अभी अभी आया, अपने हिसाब किताब चुक तू करने आया और चली गई आज। आज सुबह ही हॉस्पिटल में एक डेथ हुई अचानक, एक माता सुबह भर्ती हुई, ये जो नेपाली मार्केट है ना वहां की 14 नंबर शॉप। तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं थी, पर आई सुबह सारा कुछ सेटल हो गया, यहाँ दर्द हो रहा था, सांस फूल रहा था, 1-2 घंटे में ठीक हो गई आराम से थी। जब हम लोग राउंड्स पे गए तो इतना अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से बात किया, कोई तकलीफ भी नहीं थी, सारा बीपी और पल्स सब कुछ स्टेबल। पर एक्सरे में ऐसे हार्ट जैसे बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा, जिससे ये पता लग रहा था शायद अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। और बहुत समय से दवाइयां सब छोड़ दी थी उसने, और फिर भी सब ठीक ही चल रहा था। और अचानक 1 या 3 बजे आज अचानक ही वो पूरा हार्ट रुक गया अचानक। ऐसा बहुत रेयर देखा है हमने, बहुत रेयर, जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। एकदम ही रुक गया, एकदम ही, मतलब वो स्थिति की जो बिल्कुल अभी डेथ। और कितना देर तक सब कुछ किया उसका, 1.5 घंटा तक सीपीआर, ये वो, ये इंजेक्शन, पर नहीं आया। जो सुबह आत्मा कह रही थी कि आप सब उधर आना हमारी दुकान में, नेपाली मार्केट में, इतने अच्छे से बात कर रही थी, बैठी थी, अपने बारे में बता रही थी कि पहले मुझे ऐसा था, फिर ऐसा था, हंस रही थी, नाश्ता किया, दोपहर को भोजन किया। हमने ये सोचा ही नहीं कि ये आत्मा इस तन से निकल जाएगी। और जब दोपहर में जो हालत थी, ऐसे पूरा पीला पीला चेहरा, उसका जवान बेटा हम सबकी आयु का होगा, और उसका पति रो रहे थे। अकाले मृत्यु, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आत्मा तो निकल गई वहां से, हम ये नहीं बता सकते अभी हम, मैं आत्मा यहां हूं, 1 घंटे के बाद कहां निकल जाएगी आत्मा। और जिनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। जब ज्ञानियों को इतना दर्द होता है, पीड़ा होती है, जो विश्व को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान सुनाते हैं, उनको तो कितना दुख होता है। अभी जिनको आत्मा ही पता नहीं है, उनकी क्या अवस्था हो रही होगी। एक व्यक्ति है इधर, जिसकी पत्नी का निधन हुआ था हॉस्पिटल में ही, 5 साल हो गए। अभी जब भी मिलता है ना, उसकी याद करता है, उसी को, उसी की याद में। उसकी उम्र होगी 65 अबव, पर अभी तक वो भूला नहीं है, 5 साल हो गए। अभी तक उसी की बातें, उसी की याद, उसी का चिंतन, उसी के गम में डूबा हुआ रहता है। सब कुछ अच्छा है, परंतु उसकी याद भूलती नहीं है, इतना गहरे स्तर पर जाती है। इसके लिए यह आत्मा का जो चिंतन है कि मैं आत्मा हूं, इस देह से अलग हूं, मेरा इस संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, किसी के साथ कुछ करना नहीं है, मैं अकेले ही आई हूं यहाँ पर, यहाँ इस देह में भी मेहमान हूं। जैसे बाप दादा उस तन में मेहमान है, कितनी बार अव्यक्त वाणियों में आए, तुम भी अपने आप को इस तन में मेहमान समझो। कल जो एक्सरसाइज बताई ना, वो क्या है, 4 स्वरूपों की अभ्यास। अभी अभी यहाँ कर्मयोगी, स्वरूपधारी, वतनवासी, परमधाम वासी, वैकुंठवासी, ये 4 स्वरूपों का अभ्यास करो तो वजन कम होगा। मोटापा कम करने के लिए ये विधि बताई, महारथी की परिभाषा ही वो है वेटलेस। तो भारी ये सारी चीजें करती है, लगाओ, आसक्ति हल्का करना है उसको। तो हम बात कर रहे थे आत्मिक स्वरूप में यहां स्थित होने की। चाहिए तो हो गया उस दिन की मुक्ति। तो नवीनता, एक बात, एक होमवर्क नवीनता का है, और दूसरा होमवर्क है मिलन, निरंतर होता रहे, सदा होता रहे। फिर उसको आप अलग अलग रीति से, एक तो समान में स्थित हो के आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, या फिर छोटी छोटी रूहानी ड्रिल, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, मैं आत्मा हूं, इस तन में हूं, और किरणें निकल रही है बस। आत्मा बार 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 देखना, स्वयं को बार 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 याद दिलाना कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं, मैं ये हूं, ये अभ्यास। तो उस मुरली से ये 2 होमवर्क है, कल की मुरली, अव्यक्तवाणी कल की। क्या बोला बाबा ने,
ज्यादा तेल वाला नहीं खाना।
तेल वाला नहीं खाना, और दूसरा
पूरा
सड़ी
खाना
हुई
चाहिए।
चीजें नहीं खानी और तेल वाली चीजें नहीं खानी। सड़ी हुई चीजों में दो बातें थी, कौन सी?
चलिए
एक तो व्यर्थ बीती हुई बातों को याद करना, चिंतन
पढ़ाई
करना, एक वो। दूसरा, दूसरों की कमी और अवगुण और कमजोरियों को धारण करना, सेवन करना, बुद्धि द्वारा स्वीकार करना, जो भी कहो। ये दो बातें जो है वो सड़ी हुई। और तली हुई कौन सी? तली हुई मतलब टेस्टी होती है ना, हर चीज तली हुई है। तेल से कोई भी चीज डालो तो टेस्टी टेस्टी बन जाती है। इच्छा नहीं हो तो भी आकर्षण करती है। जितना ज्यादा आकर्षण उतना ज्यादा नुकसान। बहुत ही भयंकर महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया है कल। जितना ज्यादा आकर्षण उतना ज्यादा नुकसान। ये केवल वो खाने पीने की बात नहीं है, बहुत बड़ी। कभी एक 95 की मुरली में कहा था, जितना ज्यादा दिलचस्प समाचार उतना ही व्यर्थ। तो तली हुई चीजों में क्या बताया? व्यर्थ बातें सुनना और समाचार सुनना और सुनाना। तो ये दो चीजें अगर होती है तो क्या बढ़ता है? उधर संसार में भी मोटापा बढ़ता है शरीर का, यहां किसका बढ़ता है? स्पिरिचुअल ओबेसिटी, आध्यात्मिक मोटापा। यहाँ किसका? आत्मिक रोग उत्पन्न होते हैं यहाँ पर, भारीपन आता है। भारी व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, भारी व्यक्ति रुकना पड़ता है, भारी व्यक्ति को सहारा लेना पड़ता है, भारी व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ सकता है, भारी व्यक्ति सेट नहीं हो सकता है। ये सारी बातें उसमें बोली है बाबा ने। तो वो तो स्थूल, और यहाँ पे सूक्ष्म, तीव्र गति से पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, इधर चढ़ती कला में नहीं जा सकता है। दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, आवश्यकता हो जाती है दूसरों के, बिना सहारे के चल नहीं सकता है। एक बाप सहारा है, पर आवश्यक दूसरों का सहारा। घूमने जाना है तो कोई एक चाहिए, वॉकिंग जाना है तो चाहिए एक, अकेले नहीं जाते। खाना खाना जाना है तो एक जन चाहिए, बाजू में बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ। कहीं बैठे हैं तो कोई वहां आके बैठे तो बातें चले। बैठना, स्पॉट्स होते हैं ना अलग अलग बैठने के और चर्चा करने के। यहाँ भी होंगे, मुझे यहाँ की पता नहीं, उधर की पता है। अलग अलग जगह बैठते हैं दो तीन लोग मिलके, और डेली व्यर्थ सुनना और सुनाना समाचार। ये अलग अलग पॉइंट होते हैं इसके, हर एक जगह पर। वहां बैठ के चालू हो जाता है, तो ये सब उसमें आता है कैटेगरी में। तो दूसरों की सहारा, छोटी छोटी बातों में सहारा। यहां से वहां जाना है कोई तो चाहिए, वहां से वहां जाना है कोई तो चाहिए, खाना खाने के लिए भी चाहिए कुछ, ताकि बैठ के बातें हो सके। एक अव्यक्त बाबा मुरली में बाबा ने कहा है, टेबल टॉक। बच्चे टेबल टॉक में बिजी हो जाते हैं, बाप को भूलते हैं भोजन करते समय, टेबल टॉक में लग जाते हैं। टेबल टॉक बाबा का वहां वाक्य है ये, तुमको लाइट माइट स्वरूप में भोजन स्वीकार करना है, और कौन से स्वरूप में स्वीकार कर रहे हो, उधर उधर की बात है। घूमने जाना है तुमको, चिंतन में जाना है, जैसे वो पादरी साकार मुरलियों में आता है ना, क्रिश्चियन, वो कैसे एकांत में चिंतन करके जाते हैं क्राइस्ट की याद में। तुम्हें वैसे बाप की याद में जाना है, और तुम जाते किसकी याद में हो? मोबाइल कौन सा आया, गाड़ी कौन सी आई, ये क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पूरा। ये सारी चीजें थकाती है, और आत्मा में वजन, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा का वजन, आत्मा कितनी हल्की है, वेटलेस, और उसमें वजन हो रहा है। किसका वजन होता है उसमें? इन बातों का, बीती हुई बात का, दूसरों के अवगुण धारण करने, और तीसरा व्यर्थ समाचार सुनना सुनाना। ये तीन बातें हैं, इनकी परहेज करो तो मोटापा कम हो, तो वजन कम हो, और दूसरा बोला एक्सरसाइज। पर ये भी बात क्यों कर रहे थे बाबा? ये वजन की बात आई कहां से? उसके पहले क्या बोला? नंबर वार है, यहां से चालू हुआ ना सारा। बाबा क्या देख रहे हैं? बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देख रहे हैं। अरे एक यथाशक्ति संकल्प से मंजिल पर पहुंचने वाले, पहुंच रहे। 16 बातें बताई हूं जो एक एक है। कल की क्लास में हमने उसमें से बहुत सारी निकाली रात में, पांडव भवन में इतनी सारी नई 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 निकाली सबने, तो कौन सी वो 15-16 बातें हैं जो एक है सबका,
पढ़ाने वाला एक,
पढ़ाने वाला एक
क्लास में
नहीं,
पढ़ा एक,
शिक्षक एक और शिक्षा एक,
श्रीमत एक,
श्रीमत एक, संकल्प एक,
मार्ग
मंजिल
एक,
एक, सहज मार्ग एक, सहयोगी स्वरूप एक,
वरदान एक,
वर्षा एक,
फूल एक,
कुल एक,
समय
वंश एक, पुरुषार्थ का साथी एक, पुरुषार्थ का समय एक, और स्थान एक, गाइड एक, टीचर, टीचर उसमें नहीं बोला, शिक्षक शब्द है, शिक्षक एक, और फिर दूसरे पेज में जो बोला है लास्ट कि एक सहारा बाप होते हुए भी अनेकों का सहारा लेते हैं, जो दूसरे पेज पर है, तो सब कुछ एक फिर भी नंबर वन। यहाँ जो उदाहरण जो दिया हुआ है बहुत अच्छा, जो उदाहरण जो हमने कल भी डिस्कस किया जगदीश भाई का, जब रात्रि क्लास हुई फिर बाबा ने कहा कि प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखना है, ईश्वरीय परिचय देना है कि साकार ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा में परमपिता परमात्मा आ चुके हैं, और आपको अगर वो सतियों की दुनिया की स्थापना होनी है तो वर्षा लेने आ जाओ, ऐसा आशय का एक पत्र लिखना है, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। तो वहां 5 लोग थे, बहुत सारे लोग थे, कौन कौन लिख के लाएगा, तो ये सबने हाथ उठाए। एक तो जगदीश भाई जी थे, दूसरा एक मैनेजर था, जनरल मैनेजर, कोई एक दूसरा सांसद था, एक प्रोफेसर था, एक अधीक्षक था, ये सब लोग थे वहां पर। वो जैसे कमरे में गए तो क्या हुआ, लाइट चली गई। अब बाकियों ने तो भी सोचा कि हाँ ये तो पता है ना, बाबा को भी तो पता है लाइट, हम बोल देंगे लाइट गई, या फिर ये भी सोचा कई लोगों ने, बाबा तो वैसे भी बूढ़े हो गए ना, बूढ़े आदमियों को थोड़ी याद रहता है, आज बोला वो कल भूल जाते हैं, तो देख लेंगे कल। नहीं, उन्होंने कहा मुझे तो लिखना है, उन्होंने कहा कि मुझे तो लिखना है, कैसे लिखे पर, तो एक छोटी टॉर्च थी विश्व रतन दादा ने दी हुई, वो टॉर्च से करने लगे पर उसका प्रकाश कुछ ज्यादा नहीं आ रहा था, तो बाहर देखा खिड़की से तो स्ट्रीट लाइट, तो सोचा वहां जाता हूँ। वो बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे ही सीरियसली ले रहे हो, हम तो बोल देंगे ना बाबा को कि ऐसा हुआ। उस समय मुरली 4 से 4:30 योग होता था, 4:30 बजे मुरली चालू होती थी, तो गए स्ट्रीट लाइट पे, वो लिखना चालू किया पहले हिंदी में, फिर उसको फेयर किया, फिर इंग्लिश में, ये करते करते 3:30 बज गए, और 3:30 बजे जब ऊपर आ रहे थे तो ये लोग उड़ गए थे, अरे इन्होंने देखा कि अब तक लिख रहा था, उनको लगा ठीक है लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर योग हुआ। अब सबको लगा बाबा पूछेंगे मुरली से पहले, तो पूछा ही नहीं, तो खुश हो गए कि देखा भूल गए ना, फिर मुरली भी पूरी हुई फिर भी नहीं पूछा, फिर तो लगा अभी तो भूल गए, फिर उसके बाद बाबा ने कहा आज पिकनिक जाएंगे पहाड़ी पर, फिर तो 8 बजे के बाद वगैरह पिकनिक वगैरह गए, फिर भी नहीं पूछा, पिकनिक से आ गए तब भी नहीं पूछा, फिर बाद में पूछा कि कल जो बोला था किस किसने लिखा। तो एक्चुअली जगदीश भाई ने अपने लेक्चर में जैसा बोला ना, शर्म तो आनी चाहिए थी उनको पर आ रही थी मुझे शर्मिंदा मैं हो रहा था,
मेरा
तो उन्होंने कहा इसने लिखा है, तो कहा क्या लिखा है पढ़ो, तो उन्होंने लिखा है कि मैं कोई ऐसा बहुत चमत्कारिक लेखक तो था नहीं, पर थोड़ा बहुत जो लिखा था वो बता दिया इस तरह से। तो बाबा ने उस समय 2 वरदान दिए, और वो जो बाकी लोग थे वो कुछ समय के बाद ज्ञान से ही चले गए, वो जो 4 लोग थे बाबा ने वरदान दिया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपूर्ण साहित्य आप लिखोगे, एक दूसरा यह ज्ञान विश्व के सामने पेश करने के लिए आप इस विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रवक्ता होंगे, चीफ स्पोक्समैन, ये 2 वरदान मिले। सबके पास समय एक ही था, सबका साथी एक ही था, संकल्प एक ही था, पुरुषार्थ का साथी, गाइड कहो, श्रीमत कहो, मंजिल कहो, मार्ग कहो, परंतु फिर भी नंबर वार हो गए ना। किसी ने सोचा, उन्होंने सोचा ये मुझे पहली बार भगवान ने कहा, बाबा ने कहा है तो मैं इसको करूंगा ही, ये संकल्प में यहां जड़े साथी, बाकी हो गया लगा ठीक है ये नंबर वार होने का कारण है, ये सारी चीजें एक है, कुल एक, वर्षा एक, वंश एक, स्थान भी एक, एक ही स्थान था तो नंबर वार। तो कल की मुरली में बाबा ने, और वैसा ही उदाहरण महाभारत में भी दिखाते हैं कि दुर्यो अपना दुर्योधन पूछता है अपने गुरु से कि ये क्या है, तुम ये अर्जुन को ही हमेशा ज्यादा समझते हो, वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। धनु तीर तो हम भी चलाते हैं, उसको भी वही सिखाया, हमको भी वही सिखाया, पर उन्होंने वहां उसको वही कहा कि मैंने जितना सिखाया, अर्जुन वहां पर नहीं रुका, वो उससे भी आगे गए, उसने उसके ऊपर भी प्रैक्टिस किया। वो दिखाया ना, आधी रात को जब वो द्रोणाचार्य सोया रहता है, उसको आवाज आती है कि कोई तो कोई तीर चला रहा है बाहर, प्रैक्टिस कर रहा है। वो आके देखता है कि देखता है वो छोटा सा अर्जुन तीर चला रहा है, तो बोलता है इतनी रात को तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमको किसने कहा करने के लिए। बोलता मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अभ्यास और इतनी रात में? तो बोलते हाँ, तुमने किसने कहा? बोला मुझे मेरे भैया भीम ने प्रेरणा दी है इसका, ये करने के लिए। कहता है कैसे? वो उसको कहता है कि उस दिन मैं जब जा रहा था तो देखा कि रसोई से कुछ आवाजें आ रही है अंधेरे में, तो मैंने जाके देखा तो वो भीम बैठा हुआ है और खीर खा रहा है अंधेरे में। वो महाभारत सीरियल है ना, उसमें दिखाया है ये भी। तो वो उसको पूछता है कि क्या कर रहे हो? बोलते शुभ, और बैठ जाओ चुपचाप, तुम भी खाओ। तो बोलते तुमको ये दिखता है अंधेरे में? तो बोलते हाँ, आंख, ये उंगलियां जो होती है ना, उनको भी आंखें होती है। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, ऐसा बोलता है उसको। इसके लिए अर्जुन कहता है वो बस मुझे प्रेरणा मिल गई वहां से कि ये उंगलियों को भी आंखें होती है। बराबर वो यहां पहुंचता है खाते समय, अंधेरे में भी, तो वो अभ्यास करता है। इसके लिए वो वहीं नहीं रुका, स्थान एक, समय एक, सब कुछ एक था, सबको सेम शिक्षा दी गई थी, फिर भी वो सबसे आगे गया, क्योंकि वो वहां नहीं रुका, उसने कुछ और भी किया। जैसे और एक ऐसे दिखाए कंपनी की कहानी, जैसे एक दो व्यक्ति एक साथ कंपनी में ज्वाइन किए, पर एक को फटाफट प्रमोशन मिलते गए आगे गया, अभी दूसरों को लगा हम दोनों एक साथ ही ज्वाइन किए, उसके मन में थोड़ा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा, साथ में ही आए थे और ये इतना आगे क्यों गया, जबकि मैं भी वही कर रहा हूँ, ये भी वही करता है, फिर भी इसको सब लोग ज्यादा इसकी स्तुति तारीफ करते हैं और ये आगे आगे कर रहा है, इसकी सैलरी भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है। तो वो उसको एक दिन ये हो जाता है, तो वो जाता है अपने बॉस के पास, बोलता है ये क्या, ऐसा क्यों करते हो आप, ये पार्शियलिटी है, ये पक्षपात है, ये तो नहीं होना चाहिए। वो कहता है ठीक है चलो इसका उत्तर मैं देता हूँ तुमको। वो कहता है उसको कि जाओ कोई दूसरी कंपनी से जाके, कोई एक प्रोडक्ट होता है उनका कोई मार्केटिंग का, वो उसके बारे में वो कितने का है वो जानकारी लेके आओ। तो वो जाता है और आ जाता है और बताता है कि ये 5 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, मतलब जो छोटा सा एक प्रोडक्ट था, हर प्रोडक्ट कीमत कितनी है वो उतना बताता है। अच्छा, वो कहता है उसमें कितने रंग है? मतलब वो तो मैंने पूछा ही नहीं था, क्योंकि आपने क्या बोला था वो प्रोडक्ट कैसा है, वो कितना है लेके आओ। तो चलो ठीक है, फिर वो जो दूसरा व्यक्ति रहता है उसका दोस्त, उसको बुलाते हैं, उसको भी वही काम देते हैं, जाओ पूछ के आओ। तो वो आता है, तो वो कैसे बताता है कि वहां 5 रुपए का भी है, 10 रुपए का भी है, वो ये कलर के हैं, वहां ये इतने में बेचे जाते हैं, ये इतने में बेचे जाता है, अभी इसका इतना स्टॉक है, पहले इतना स्टॉक कम था, पिछले साल इतना बेचा गया, इस साल इतना बेचा गया और इस साल इतना बेचा जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है। उसको बोला नहीं गया था, तो अभी अब समझ में आया कि क्यों इसको, क्योंकि वो वहां रुका नहीं, इसके लिए मुरली आ गई हाथ में, तो वहां रुक जा नहीं जाना, बस हो गया और पढ़ लिया और छोड़ दिया, उसके अंदर में घुसना है, उसकी गहराई में जाना है, आगे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये तीनों उदाहरण में, चाहे वो इधर का उदाहरण, चाहे वो कंपनी का उदाहरण, चाहे वो महाभारत का उदाहरण, कोई भी हो, पर सबने ये काम किया है कि जो मिला है वहां रुके नहीं, आगे बढ़ना है। चाहे योग, अपने पुरुषार्थ से कभी संतुष्ट नहीं होना, बाकी संतुष्ट रहो पर पुरुषार्थ से नहीं, पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। योग में अनुभव हो रहा है वो और गहरे अनुभव, प्रगाढ़ हो अनुभव, अनुभव संबंधों के अनुभव, आत्मिक स्वरूप के अनुभव, परमात्मा के अनुभव, उसके प्रेम के अनुभव, ये सब बातें जो है वो बहुत गहरी गहरी होती जाए। अच्छा, कितनी बार हम अव्यक्त बाबा से जाके मिलते हैं, आते हैं, परंतु जरूरी है कि बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अनुभव तभी होते हैं जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है। अनुभव का आधार आपको सबसे सामने वाली सीट दे दी और बैठो, अभी देखो अनुभव होता है तो कुछ नहीं होगा, सारा ध्यान उधर स्क्रीन पर ही रहेगा फिर। मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं, देखा ना कैसे सब देखते रहते हैं। तो ये मनुष्य मन की कमजोरी कहो इसको, क्या जो कहो, जो भी है वो है, परंतु अनुभव का आधार कुछ और ही है। किसने कितना श्रीमत की पालन कर रहा है, कितनी मर्यादाएं और आज्ञाओं का जो पालन कर रहा है उसको अनुभव होंगे। कहीं भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं हो रहा है उनको अनुभव होंगे। अमृत वेला हर दिन शक्तिशाली और हर दिन अनुभव हो रहे बाबा से समीपता के, तो वो अनुभव होंगे। ऐसे ही नहीं कि एक दिन मौन कर लिया, आज बाबा आ रहे हैं, आज दिन मौन करो और जाओ और अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं है। उसका बहुत गहरे राज है। इसके लिए ना मिलन की कितनी महिमा कर रहे हैं संसार की, तो कोई इतनी मिलन की ऐसी महिमा थोड़ी करते। और कौन से मिलन की, वो वहां बैठा है, ये यहाँ बैठे, इसी क्या, ये अगर देखा जाए एक रीति से तो वो इतना दूर, वो इतने दूर, कोई टीवी पे देख रहे हैं, कहाँ मिलन हो रहा है अगर देखा जाए स्थूल में। मिलन तो ऐसा है कि कोई यहाँ बैठे, यहाँ बैठे और उसकी महिमा करे, भाई ये बहुत अच्छा मिलन है। पर यहाँ वो बात ही नहीं है, ये आत्मा के अनुभव की बात है।
बाबा ने कहा कि महसूस कर भी रहे हैं कुछ।
हाँ, परंतु ये भाग्य की बात है। बाबा ने कहा ना अनुभव तो
हाँ
बहुत सारे हैं, परंतु अनुभव हो जाए ये भाग्य की बात है, सबको नहीं हो सकता, वो चाहे कोई चाहे तो भी नहीं हो सकता। ये अनुभव करने के लिए आत्मा में बहुत ज्यादा प्यूरिटी चाहिए, सीधा कनेक्शन उसका प्यूरिटी के साथ है। परमात्मा से मिलन का अनुभव करने के लिए पवित्रता ही आधार है। अगर ब्रह्मचर्य दिन में 10 बार खंडित हो रहा है, सूक्ष्म में बार बार देह की तरफ दृष्टि जा रही है, देह अच्छा लग रहा है, एक बार जैसे सन्यासी कहते हैं ना, किसी एक स्त्री को एक बार देख लिया ये सहज है, नेचुरल, दूसरी बार देखना ये इच्छा है, तीसरी बार देखना वासना है। एक बार देख लिया वो तो सन्यासियों की परिभाषा है, इस तरह उनके साहित्य में लिखा हुआ। एक बार कोई देख रहा है, एक स्त्री जा रही है, देख लिया देख लिया, उसी को फिर से देखने की इच्छा होना ये इच्छा है, और तीसरी बार देखना ये वासना है, काम वासना। और वो मन में भी काम वासना हो गई, मतलब वो एक्चुअल एक्ट उसके समान ही है। वहीं ब्रह्मचर्य खंडन हो गया। जहां ब्रह्मचर्य बार 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 खंडन होता है, वहां ब्रह्मचर्य तो आधार है पवित्रता की इमारत का। और जहां पवित्रता ही में ही अखंडित है, खंडित नहीं, खंडित हो रहा है बार बार, वहां परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं हो सकता, चाहे कहां भी बैठो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। इसके लिए अनुभव के लिए बहुत जबरदस्त पवित्रता की आवश्यकता है, स्वप्न मात्र भी नहीं, कोई भी आकर्षण नहीं। इसके लिए कहा ना बार बार इस देह के वास्तविक स्वरूप का चिंतन करते रहना। 2 दिन पहले मुरली में था, ये देह मिट्टी का पुतला है, फुल स्टॉप, आत्मा अविनाशी है, एक ही वाक्य था पर पावरफुल है, मिट्टी का पुतला है, सब मुरली बाजू, इसको फोकस, मिट्टी का पुतला है तो क्या, लिखना चालू, चिंतन चालू, सोचना चालू, उससे वैराग लाना चालू। जबरदस्ती वैराग नहीं लाना है, हमारा वैराग ऐसा हो परिपक्व वैराग, मतलब जो एक बार छूट गया, ऐसा नहीं कि दबा के रखा है, ये रस तो बहुत है, खाना तो है पर प्रतिज्ञा कर ली जिलेबी नहीं खाएंगे, सोचा नहीं कुछ नहीं, बस प्रतिज्ञा कर लिया, बनी है तो बार बार ध्यान जाता है, बनी है तो लगता है देखते है, छोड़ो आज नहीं बाद में, फिर दोपहर में फिर याद आती है, जो इस तरह से उपवास करते हैं उसको तो बहुत ज्यादा याद आती है, क्योंकि दबा के रखा है। वो भी एक वो मनुष्य का मन अति में डोलता है, एक तरफ अति भोगी रहता है और तो एकदम अति त्यागी बन जाता है, एक तरफ एकदम राग, एक तरफ एकदम वैराग, वो मतलब इसका ही शीर्षासन है, वो दोनों में खतरा है। एक तो बिल्कुल सोता नहीं है, फिर सोचता है अरे तो एकदम बहुत सोता है, फिर सोचता है नहीं नींद कम करनी चाहिए, एकदम नींद ही बंद कर देता है, फिर एकदम 10 10 आधे आधे 2 2 घंटे में कुछ खाता है, फिर सोचता है खाना बहुत बुरा है योगी के लिए, खाना ही बंद करो, तो ये इधर ये ऐसे अति में डोलता है। बीच में रहना उसे स्वीकार नहीं है, ये बोलते हम बहुत बात करते, आज तो पूरा मौन ही रखेंगे, छोड़ो मौन, फुल मौन। और वो जब टूटेगा तो सुनामी आएगा फिर, तो इतना बात करेंगे, इतना बात करेंगे, पूछो मत। ऐसा अति में डोलता है हमको, बीच का मार्ग बैलेंस। उस दिन भी वरदान था ना, मालिकपन और बालकपन। मालिकपन व्यक्तित्व में, व्यक्तिगत पुरुषार्थ की स्थिति, मंथन, याद की यात्रा, ये सब चीजों में मालिकपन। परंतु बैलेंस चाहिए तभी सफलता मिलेगी। और फिर वो संगठन में, साथियों में बालकपन, वो दूसरी बात है। परंतु ये जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ये जो अति में डोलना है ना, इसको यहां स्थिर करना, इसके लिए बार बार स्वयं को देखना। तो हम कहां थे? अलग अलग सब एक ही है, परंतु सबको नंबरवार क्यों हो गया? इस कारण से नंबरवार हो गया। तो बाबा ने जो दो बातें बताई, एक तो वेट की बात बताई जो हमने चर्चा की अभी, और उसकी ट्रीटमेंट भी बताई। एक होता है क्लिनिकल फीचर, एक होता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कारण बीमारी के, वो दो कारण वहां बताए। फिर उसके क्लिनिकल फीचर, लक्षण क्या क्या है वो बताए। फिर उसके मैनेजमेंट ट्रीटमेंट बताई, मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज करो और परहेज करो। और फिर दूसरा कारण जो बताया वो है, एक तो वेट हो गया, दूसरा वेस्ट। खजानों को, चार खजानों की चर्चा पर बनी, खजानों तो कई सारे हैं पर यहाँ चार, उसमें भी मुख्य दो, उसमें भी मुख्य एक जो वहां चर्चा की, जिसकी चर्चा नहीं की वो है संकल्प। संकल्प का खजाना ज्ञान का खजाना, उसके लिए कुछ बोला नहीं। तीसरा खजाना स्थूल धन, उसके लिए खाली इतना कहा कि यहाँ का नया पैसा, एक नया पैसा ही रतन बन जाएगा। और जो मुख्य चर्चा की वो कौन सा खजाना था? समय। क्या कहा उसके लिए? अब वो बता, समय के लिए क्या कहा? समय खजाना है तो व्यस्त, तो कैसे बताया उसको? कई अलग अलग अर्थों में उसको डिफाइन किया बाबा ने। जैसे मूल्यवान वस्तु है, उसका मूल्य न रखना ये भी वेस्ट है। कोई कहते हैं हम तो पाप तो नहीं किए, किसी का बुरा तो नहीं किया, अच्छा भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, अब पर जमा भी तो नहीं किया, ये भी वेस्ट है। वरदान तो मिला पर खुद के प्रति जमा नहीं किया और दूसरे के प्रति दान नहीं किया, ये भी वेस्ट है। स्वयं के प्रति कार्य मैंने लगाना, दूसरे के प्रति कार्य मैंने लगाना, ये भी वेस्ट है। इसके लिए दूसरा और एक सूक्ष्म, जो कल एक भाई बता रहा था क्लास में, कि हमने अब तक पालना ली है बाबा से, पालना दी नहीं, ये भी बोझ है। अब पालना अर्थात देना अर्थात केवल केवल ज्ञान की सेवा नहीं है, सूक्ष्म में अपनी स्थिति को ऊंच बना देना, ये भी विश्व को पालना देना है। अपनी स्थिति को महान बना देना, सकाश देना, ये भी पालना है। हम डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, अब जो नए लोग आए हैं डिपार्टमेंट में सेवा के लिए, उनको पालना दी, उनको भी, वो जो नए हैं उनको भी पालना देना, सूक्ष्म में देना। चाहे पालना देने का मुख से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, कि भाषण दे रहे वही पालना है, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। संकल्प हमारे भावनाएं, हमारी सूक्ष्म फीलिंग्स, इमोशंस, आत्माओं के प्रति क्या है, ये भी पालना देना है। गुलजार दादी ने एक बार छोटी बहनों का क्लास कराया था, बताया था ना यहाँ पे, वो ऐसी बहनें थी कि उनको बड़ा तकलीफ थी अपनी बड़ी बहनों से। वो सब जैसे कि दादी को भी बात बताती है कि भाई ये इनको, वो सेंटर मतलब वो जहाँ गई थी वो बहुत बड़ा जो एरिया था एक बार, तो दादी ने उन बहनों को क्या कहा था कि वो बहुत ही परेशान थी, सुबह से लेके काम करो, ये करो, ऐसा करो। दादी ने उन छोटी बहनों को कहा था बहुत पहले कि तुम्हें तुम्हारी जो बड़ी बहन है उसकी पालना करनी है सूक्ष्म में। इतना बड़ा सम्मान दे दिया था, तुम जगत माता हो तो उसकी भी पालना तुमको करनी है। दादी को ये भी पता था कि वो जो है मेन एक, उसके वजह से ये सारी दुखी है, तो उनको क्या सम्मान दिया, उसकी पालना तुम्हें करनी है। तो हमें इतनी सूक्ष्म पालना है सबकी करनी है, तो पालना न करना ये भी बोझ है। तो यहां जो बात हुई थी कि मूल्य वस्तु ले ली और रख दिया, यूज ही नहीं किया, तो समय सबसे मूल्यवान है। पद्मों का मूल्य है बाबा ने कहा, पद्मों की कमाई होती है इस समय से, संगम के समय को वरदान है पद्मों की कमाई करने का, उसी में दिखा। तो ये इस मूल्य की पांचवी बात जो करना है, सबसे पहले बीती हुई बातों, का चिंतन न करना, जो हो गया हो गया, पश्चाताप भी करना है ना, एक सेकंड पश्चाताप किया, अभी बार बार सारा उम्र पश्चाताप, जो भूले हुई हो गई, जो गलतियां हुई हो गई, अभी उसको क्या दोहराते ही रहेंगे, हो गया फिनिश फुल स्टॉप, ठीक है, उसका पश्चाताप कर लिया, उससे सीख लिया, अब बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। एक मुरली में पापा ने एक डेफिनेशन दी है तीव्र पुरुषार्थ की, जो एक गलती फिर से न होना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो एक तो सबसे पहले बीती हुई बातों को, जो हो गया है पीछे पुराने वर्ष में हो गया, वो 2015 का था, अभी 16 है, नया वर्ष है, नया अव्यक्त मास है, एक तो ये। दूसरा, अवगुणों को ना देखना, जो भी आत्मा है सब महान आत्मा है, सबका अपना अपना पार्ट है, सबका अपना अपना रोल है, हमें उससे अंदर ज्यादा जाना नहीं है, दूसरों को देखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है, दूसरा। तीसरा, व्यर्थ समाचार सुनना सुनाना। चौथा जो करना है एक्सरसाइज, और पांचवी बात जो करनी है टाइम वेस्ट ना करना। ये पांच बातें हैं कल की मुरली से जो होमवर्क के रूप में निकाले, कि टाइम वेस्ट, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, घूमना फिरना और भोजन, ये ब्राह्मणों को पूरा ऐसा जकड़ के रखा है, सबसे पहले भयंकर जकड़ के रखा है। कभी न्यूज चालू होते थे, कभी सीरियल चालू हो गया, पता ही नहीं चलता है, और वो थोड़ा सा देखते, थोड़ा सा थोड़ा 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 करते करते, थोड़ा 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 करते हथौड़ा लग जाता है। जगदीश भाई ने एक अपने आर्टिकल में लिखा है, थोड़ा 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 और हथौड़ा। तो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, किसमें, इधर उधर की बातें करने में, बैठे हैं और बातें चालू है, महफिल लगी है, सुनहरी टोली, जानकी दादी इसको कहती थी सुनहरी टोली, बैठी है और इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ क्या हुआ, वो क्यों यहाँ है, ये बहन अभी तक गई क्यों नहीं, बहुत दिनों से दिख रही है, कहाँ से पता करो। व्यर्थ का विस्तार है ये, तो इसी में लगे हुए है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, ये कहाँ है, ये क्या है, हमें कुछ करना नहीं है किसी से, यहाँ आए किस लिए थे। वो अरविंद रमन महर्षि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, एक शिष्य था वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता था, मतलब वो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कमेंट्स करना, टॉन्ट करना किसी के ऊपर। और दूसरा एक शिष्य था, वो बिल्कुल अच्छा पुरुषार्थ करता था, अपना ध्यान, मेडिटेशन सब कुछ करता था, पर वो उसके ऊपर भी कमेंट करता था, हर चीज में कमेंट करना। तो उसने बताया वो अपने रमन महर्षि को, ये क्या है, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मैं तो सब अच्छे से साधना करता हूं, पर ये भाई ऐसा है कि ये आप उसको बोलते भी नहीं कुछ, सबसे बात तो बड़ी बात तो ये है कि वो ये जो भी कर रहा है उसको आप इंचार्ज हो, आपको बोलना चाहिए ना उसको कि ऐसा यहां नहीं करना है, मेन तो वो है, वो सबसे ज्यादा दुखदाई है कि आप कुछ भी एक शब्द भी उसको नहीं बोलते हो, आप बताओ। तो बोलता है वो जिस कार्य के लिए यहाँ आया है वही कर रहा है, तुम जिस कार्य के लिए आए हो तुम वो करो, बस ये उत्तर उसको करने जो कर रहा है वो इसी के लिए यहाँ आया था, उसको बोल के वो रुकने वाला थोड़ी है, लेकिन करने तो जो कर रहा है, तुम वो करो जिसके लिए तुम यहाँ आए थे, हम किस लिए आए थे वो अपने को डिसाइड करना। तो टाइम वेस्ट हमारा ना हो, बार बार यही चीज ध्यान में रखनी है। बहुत सारा पढ़ने को है, इतने सारे ज्ञानामृत हो गए पढ़ के, नहीं हुए। सारी मुरलियां हो गई 69 से अब तक, नहीं हुई। सारा लिटरेचर हो गया लिटरेचर डिपार्टमेंट का, अगर ये हो गया होगा तो भले करो टाइम वेस्ट, फिर घूमो फिरो, नया नया बनाओ भोजन, आज ये बनाओ, आज इसको छोक, आज उसको छोक, आज उधर सब्जी बनी है पर इधर स्पेशल सब्जी, पोहा तो बना है पर स्पेशल पोहा, जो करना है करो, पर ये सब सारा हो गया होगा, योग का चार्ट बढ़ गया है कि निरंतर योगी बन गए तो वेस्ट करो, पर ऐसा नहीं है, इसके लिए थोड़ा भी टाइम हमारा वेस्ट ना हो इधर उधर, सारा टाइम योग और ज्ञान, ज्ञान और योग में लगा रहे, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। सेवा सबसे लास्ट है और वो हमको ज्यादा सोचना भी नहीं होती, वो सदा ही होती रहती है, वो सेवा में भी ज्ञान योग समाया हुआ हो, सेवा में भी बीच बीच में चिंतन चालू हो, जहां पे भी हम खड़े हैं वहां पर कुछ ना कुछ सेवा होती रहे सूक्ष्म में। और ये ज्ञान और चिंतन, ये बाबा ने कभी कहा ना, स्वदर्शन चक्रधारी चक्र फिराना, अर्थात विश्व को सकाल जाती है स्वतः ही, विश्व का कल्याण करते हुए, एक दिन वरदान इसमें था प्रश्न उत्तर में। ये एक, तो ये
में भैया 500 स्वरूप नहीं दिया बाबा ने,
बाबा कभी 3 देंगे, कभी 2 देंगे, कभी 1 देंगे,
नहीं 3
बाबा के मूड के
दे
ऊपर है। कभी
दिया
3 स्वरूप, कभी 2 स्वरूप, कभी 4 स्वरूप, कभी कहेंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, कभी कहेंगे फरिश्ता, इसके पहले की लास्ट संडे की मुरली एक ही स्वरूप, कंट्रोलिंग पावर,
बाबा।
फरिश्ता स्वरूप, जो उसमें भी यही बातें थी, जो मध्य काल के जो है अपने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं उसमें भी था। टाइम वेस्ट करना, व्यर्थ बातें सुनना सुनाना, आलस से अलबेलापन और निगेटिव, ये हाँ। तो इसके लिए फिर माया को समझ जाओ, फिर वो दरबार लगाओ, फिर कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। पर ये सब भी किस लिए था? फरिश्ता के लिए। शुरुआत में बोला था कि देवता और फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करो, पर मुरली चली फरिश्ता। तो हर मुरली अलग अलग है, लहर अलग अलग, कभी फरिश्ता स्वरूप, कभी देवता स्वरूप, कभी ब्राह्मणों की महिमा, वो दोनों गए। फिर ये 3 स्वरूप, किसी मुरली में 4 स्वरूप, किसी मुरली में 5 स्वरूप, किसी वो 5 स्वरूप में भी कई कई मुरली में अलग, एक स्वरूप उसमें मधुवन का डाल देंगे, मधुवन में आ जाओ। रमणीकता चाहिए ना, उसको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। उसने बोला ना, बाबा भी एंजॉय करता है सिर्फ रमणीकता ऐसा होता है, तो रमणीकता चाहिए। तो ये 5 बातें उस मूर्ति से, और 2 बातें जो 31st की मूर्ति थी, मिलन होता रहे और नवीनता लानी है। व्यर्थ बातों में ये कल की जो मूर्ति थी बहुत पावरफुल मूर्ति थी, उसमें से ये चीजें उठानी है, और आगे भी जो मुरली आती रहेगी उसका भी इस तरह से उसका चिंतन मनन और उसी में रमन करते रहना, तो स्वतः ही योग बहुत सहज हो जाएगा। योग तो वास्तव में कोई वो बाबा के कमरे में बैठ के स्थिर होकर, वो कोई योग नहीं है खाली। योग तो हमारा वास्तविक योग तो वहां से निकलने के बाद चालू होता है, कमरे से आउट होते ना, दैट इज द टाइम, वो है योग। वहां से निकलने के बाद वो क्या कर रहे हो, वो है योग। वहां पे बैठ के शरीर को स्थिर कर देना योग तो है नहीं, ये कोई हट योग तो है नहीं। बाबा ने तो निरंतर योगी बोला है ना, तो सदा निरंतर सहज योग हमारा होते है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सैटरडे, अगले संडे की जो मुरली होगी वो डबल विदेशियों से मुलाकात है, शायद देखा नहीं मैंने, उसको थोड़ा पढ़ के रखना। आज से लेकर तो सैटरडे तक आए हुए सारे स्लोगन, सारे वरदान पढ़ना, याद रखना। एक अलग से बुक बनाओ छोटी, उसमें केवल वरदान और स्लोगन ही लिखना है, और उसको फ्रैगमेंट करके लिखना, टुकड़े टुकड़े कर देना। एक वैसे के वैसे नहीं लिखना, एक पॉइंट जहाँ पूरा हुआ तो उसको थोड़ा दूसरा नीचे या एरो वगैरह डाल के, कैसे कनेक्टेड है दूसरा, इस तरह से कोई चित्र वगैरह बना के, ताकि वो याद भी रहे, अलग अलग वो करके वो भी। तो सारे स्लोगन, सारे वरदान, और क्योंकि अव्यक्त मास है तो हम लोग जैसे उधर हर दिन दो 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 69 की मुरली, जैसे आज 2 मुरलियां हुई, 13 संदेश 2 दिन में हुए, हर एक को दिए हुए है, वो बिना देखे बता रहे हैं, मतलब पहले से स्टडी करके, याद करके और उदाहरण दे के। बहुत पावरफुल क्लास चल रहा है उधर, और कल अभी और 2 मुरली है, कल 2, कभी 1, कभी 2, पूरा 1 मास में 42 जितनी मुरलियां है वो पूरी 40-42 मुरलियां सारी कवर करने का लक्ष्य रखा है। और वो केवल जो जिनको होमवर्क दिया है वो ही नहीं पढ़ रहे, सबको ही पढ़ना है, ताकि उसमें चर्चा भी हो और डिस्कशन भी हो। हाँ 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 आपका इधर, हाँ उसको पढ़ते भी रहना थोड़ा, उसमें जो उसमें ड्रिल्स आती है ना, जो बाबा ने सीन इमर्ज किया, जैसे अभी कल के हमारे इसमें सीन इमर्ज किया कि वो नाव समुद्र से चल रही है, जहां पाव रख रही है वहां से वो कमल आ रहा है, फिर 2 नाव, एक डूब गई एक नहीं डूबी, तो जो बाबा के साथ है वो कभी डूबेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, इस तरह से फिर हम इसका योग में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ड्रिल्स,
मेरा संकल्प है कि पूरा मुरली जो अभी किए हैं जितना भी संदेश मुरली ने सब सीख एक वक्त निकाल लेते हैं।
वो किया हमने, वही तो किया अभी, 13 संदेश है टोटल। पहले 2 दिन 2 लोगों ने किया, एक तो मैंने 3 बताए और किसी वो एक बहन ने 3 बताए, फिर दूसरे दिन एक भाई ने 3 3 लोगों ने 7 संदेश कवर किए। दूसरे दिन आज 2 मुरलियां हुई, कल अभी और 2 मुरलियां हैं, कल 23 तारीख और 24 तारीख की मुरली का होमवर्क है, फिर उसके बाद में 2 तारीख का है, फिर 25 तारीख का, फिर 2 तारीख का, मतलब हर दिन का वो टाइम टेबल बना हुआ है, बनाया हम लोगों ने बैठकर, और वो पूरा रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, चिंतन चलता है, और जिसको होमवर्क दिया था वो तो और ज्यादा ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि उसको सामने बैठना है ना, इसके लिए तो टेंशन तो चाहिए थोड़ा, बिना टेंशन के काम तो होता नहीं। ऐसे चालू है ढीला ढाला, उससे नहीं होता है, वो चाहिए कि भाई तुमको ये करना है, आपको अगर दे दिया जाए भाई कि तुमको 25 तारीख की ये मुरली इधर रिवाइज करानी है, तो कैसे भी करके सारे दिन भर कितने भी डिस्टरबेंस आने दो, वो बार बार खोल के देखोगे हाँ ये है ये है ये है, उसका रिवाइज करोगे, चिंतन करोगे, मन तो ऑटोमेटिक टाइम सफल होता है। नहीं तो जो कोई लक्ष्य नहीं रहा ना तो ढीला डाला रहता है। ठीक है, जैसे आज की मुरली ले लो, अगर आपको कहा कि भी आज की मुरली में आपको सामने बैठ के उसका थोड़ा चर्चा करनी है, तो पहले तो आपको तो पता चाहिए ना। जैसे जगदीश भाई का वही हाल हुआ था कि उनको वरदान तो मिल गया, फिर बाद में बोला अरे मुझे दुनिया के लिए लिखना है, पर पहले मैं तो समझू ये है क्या ज्ञान। उन्होंने उसमें भी लिखा है कि पहले मुझे तो समझना है। वो बाबा को पूछा मैं कि मुझे तो मुझे उसकी बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, अगर मुझे लिखना है और विश्व के सामने दिखाना है तो ये फीलिंग हमेशा रहे। बाबा ने कहा हर एक लीडर है, हर एक टीचर है, ऐसा नहीं कि कोई एक बैठ के सुना रहा है तो वही है। यहाँ तो हर एक टीचर है ना, हर एक को टीचर है, हर एक को टीच करना है, तो वो ऊंचा लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ।